ओम शांति। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसकी हम चर्चा करेंगे। मुरली तेरी में है जादू। कौन सा जादू है मुरली में? मुरली एक जादू है, एक तिलिस्म है। भागवत में दिखाया है वो गोपिया सुद्भुत को देती थी। तो भगवान की जो मुरली है उसमें कोई ईश्वरीय जादू है। मुरली ज्ञान का भंडार है, मुरली परमात्म वेद है, परमात्म उपनिषद। तो भागवत में दिखाया है गोपिया उस मुरली की दीवानी थी। जैसे ही मुरली सुनती थी सुद्भुत खो देती थी। इतना अथाह प्यार। भागवत में गोपिका गीतम है जिसमें वो गोपिया श्री कृष्ण की और उसके गीत की और उसकी मुरली की महिमा करती है। तव कथा अमृतम। हे गोविंद, तेरी जो कथा है अमृत है, तेरी जो वाणी है सुधा रस है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। हमारा जो जीवन है तप रहा है दुखों में, दर्द में। आज सुबह की मुरली, एक एक आत्मा कहां डूबी हुई है, दुख दर्द में डूबी हुई है। छी छी बातों में और भिन्न भिन्न ख्यालातों में रहती है। तप्त जीवनम कवि भिरडितम, जिसका कवियों ने गायन किया है। और जो इसको समझता है वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरडितम कल्मषापहम। हमारे जीवन में जो कलंक है, दाग है, विकार है, पाप है, विकर्म है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है, वो सब कुछ मिटाने वाली है। कल्मषापहम श्रवण मंगलम। केवल सुनने मात्र से, श्रवण से ही मंगल होता है। दुविगृणंति ते भूरिता जना। ऐसी भगवान की वाणी है। तो रोज सभी ब्राह्मण आत्माएं मुरली तो सुनती है, परंतु उस मुरली के साथ क्या करना है उसकी हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो रोज की जो मुरली है उसके साथ पांच बातें करनी है। भगवान के महावाक्य है, मुरली क्लास सुनने जाना, बैठना, मुरली की पॉइंट्स लिखना और वापस आ जाना, यह है पुरानी चाल। एक है साधारण पुरुषार्थ, एक है डबल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ अर्थात सुबह सुबह अमृत वेला उठना, बाबा को गुड मॉर्निंग करना, योग करना, अच्छा पावरफुल योग, उसके बाद में मुरली का अध्ययन करना, फिर मुरली क्लास में जाना, मुरली सुनना या सुनाना, फिर उसके बाद में भोजन बाबा की याद में बनाना, भोजन खाना, सारे दिन भर में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करना, शाम को नुमा शाम का योग करना, रात को थोड़ी मुरली की चर्चा करना और सो जाना। इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। क्या कहा जाता है इसे? साधारण पुरुषार्थ। तो तीव्र क्या है फिर? तीव्र क्या है? तीव्र में कुछ और होना चाहिए। वो क्या तीव्रता है वो हम अभी देखेंगे। क्या हम करें कि जिससे अभी जैसा जीवन है वो बदल जाए? पुरुषार्थ की एक शब्द में परिभाषा जगदीश भाई जी ने कभी दी है, पुरुषार्थ अर्थात परिवर्तन। पुरुषार्थ कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल, परंतु परिवर्तन नहीं तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। कोई स्मोकिंग सिगरेट पीने वाला कहता है मैं 40 साल से छोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं, तो क्या कहेंगे पुरुषार्थ? क्या यह पुरुषार्थ है? इसका अर्थ अभी भी वो क्या है समझा नहीं है, और जब पता चल जाए कि यह जहर है तो वो बीड़ी वो सिगरेट आधी जल रही है वहीं छोड़ देगा व्यक्ति। फिर ये नहीं कहेगा कि मैं बाद में छोड़ूंगा। जब पता चल जाए कोई भी चीज विष है तो तत्काल त्याग, यही पुरुषार्थ है। जब पता चल जाए विकार विष है, कभी काम कभी लोभ कभी क्रोध, कल की मुरली तूफान आते रहते हैं, भूत भूत का सामना करता है, भूतों की यह दुनिया है, वो महात्मा बुद्ध थे। एक ही बार राज्य से बाहर निकले और देखा बूढ़ा व्यक्ति, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हां। दूसरे दिन फिर देखा बीमार व्यक्ति, क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? हां। तीसरे दिन फिर निकले, कोई व्यक्ति मर चुका है, क्या मैं भी मरूंगा? इतने दृश्य देख लिए और सीधा वैराग को उपलब्ध हो गए। हम रोज देखते हैं परंतु वैराग नहीं आता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हे अर्जुन, इस संसार को देख, जन्म को देख, मृत्यु को देख, जरा को देख, व्याधि को देख और इस संसार से अनासक्त हो जा। तुम वनवाह में हो, परसों की मुरली। तापसी जीवन है, तपस्वी हो, साधनों में सुख सुविधाओं में ऐशो आराम में ब्राह्मण जीवन यदि व्यतीत हो रहा है तो क्या कहेंगे? और फिर बाप से कहते हैं, बाबा हमको आपकी मुरली सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, परसों की मुरली। बाप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुमको शर्म नहीं आती ये कहते समय? फुर्सत नहीं है, घूमने फिरने के लिए फुर्सत है, खाने पीने के लिए फुर्सत है, यहां वहां की बातें करने के लिए फुर्सत है, और मुरली का अध्ययन करने के लिए फुर्सत नहीं है? तो रोज जो मुरली चलती है, 5 चीजें उसके साथ करनी है। सबसे पहले एम मुरली, एम यू आर एल आई, 5 शब्द है। एम अर्थात मनन। क्या करना है मुरली का? मनन करना है। मुरली क्लास में गए, मुरली की पॉइंट्स लिख ली, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा एक एक शब्द में। क्या कह रहा है भगवान, क्या वो चाहता है? कोई एक वाक्य मुरली से उठाओ, जैसे आज की मुरली में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, तुम बाप के बिना कुछ नहीं कर सकते। काहे की अकड़? मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, हमने ये सेवाएं की, वो सेवाएं की, कौन करा रहा है सेवाएं? संगम युग पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा कृपा दया आशीर्वाद अनुकंपा से हो रहा है। जैसे ही महाभारत में दिखाया कृष्ण चले गए युधिष्ठिर, जैसे राज्य में घूमने लगा, कुत्ते भौंक रहे, आज तक कभी भौंके नहीं थे, दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं, चोरी हो रही है, ये क्या हो गया? खबर आई कि अर्जुन भी लूटा गया आबू की पहाड़ी के नीचे, वो भीलों ने लूट लिया, क्या हुआ? उधर से खबर आती है श्री कृष्ण तो गए। अब तक जो पांडवों का बल था वो किसके वजह से था? उसके वजह से था। हमारी जो पावर है, हमारी जो शक्ति है, वो उसके वजह से है। यदि वो जीवन से चला जाए तो हम कुछ भी नहीं। यहां जो हम अभी बैठे हैं, ये भी उसी की कृपा है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब महान आत्माओं का संग मिलने लगे, इतनी सारी महान आत्माओं का एक साथ संग मिल जाना, इसका अर्थ हम पर परमात्मा कृपा है। क्या लक्षण है कि हम पर परमात्मा कृपा है? लक्षण यही है कि जब परमात्मा कृपा हो जाए तो जीवन में श्रेष्ठ आत्माओं का संग मिलेगा, महान संकल्प जागेंगे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो क्या है? मनन। उसमें फिर चार प्रश्न है। मनन क्यों करना है, मनन कैसे करना है, मनन कहां करना है, क्यों, कहां, कैसे और कब? चार प्रश्न है। पहला प्रश्न लेते हैं, मनन कब करना है? हमें मुरली का चिंतन कब करना है? सुबह का समय, 5 और 7 के बीच। अमृत वेले के बाद नींद किसको बहुत अच्छी आती है? अच्छी वो समय चिंतन का है। वायुमंडल शुद्ध है। अभी अभी अमृत वेला किया और उसके बाद जाके सो गए और फिर 6 और 6:30 बजे उठना, अर्थात की कमाई नष्ट करना। पहले तो ये धारणा मजबूत करनी है हर एक को कि अमृत वेले के बाद का जो समय है वो चिंतन का समय है। जो सुनाने वाले हैं या फिर सुनने वाले भी, वो सोचे उस स्पिरिट में क्या करना है हमें। सेवा करते हुए भी यदि किसी को सेवा है, वो सेवा चालू रहे, परंतु मन में ज्ञान की कोई बात का चिंतन चालू रहे। क्योंकि बिना श्रेष्ठ चिंतन के चेतना ऊपर उठेगी ही नहीं। जो संकल्पों के साथ हम रात में सो रहे हैं, उसी संकल्पों के साथ हम सुबह उठते हैं। यदि वो व्यर्थ होंगे तो व्यर्थ से उठेंगे, यदि वो विकारी है तो विकारी से उठेंगे, यदि वो घृणा नफरत के है तो उसी संकल्प से उठेंगे। चाहे अब तक जो भी हुआ हो गया, परंतु अब संकल्प करना है कि हमें अपने चिंतन की धारा को तेज करना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, चिंतन कब करना है? अमृत वेला करना है। कब करना है? नुमा शाम के समय भी कर सकते हैं। कब करना है? रात को सोने से पहले कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? सारे दिन भर भी, जब भी समय मिले तब। ट्रैफिक में फंस गए हैं, सोचो, चाहे ट्रेन में है, चाहे गाड़ी में है, चाहे फ्लाइट में है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चिंतन, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लिस्ट निकालनी है टाइम वेस्टर्स की। मेरे दिनचर्या में कहां कहां टाइम वेस्ट होता है? इधर उधर की बातें करने में, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कहीं ये मेरा समय तो नहीं खींच रहा है? तो चिंतन करना है सुबह सुबह अमृत वेले के बाद, या तो शाम या तो सोने से पहले। और एक चीज, यदि पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है या इवन सेवा केंद्र में, रात को सोने से पहले मुरली का डिस्कशन होना चाहिए या ज्ञान का डिस्कशन। एक किताब है, यज्ञ में वार्य मैं ब्राह्मण आत्मा, देखिए किताब सबने, एक छोटी किताब है जिसमें बाबा के महावाक्यों का संकलन है। एक जगह है ब्राह्मण आत्माओं के कर्तव्य, 10 कर्तव्यों में से 10 नंबर का कर्तव्य उसमें लिखा है बाबा के महावाक्य, मुरली का डिस्कशन करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है। यह ज्ञान इतना विराट है, वास्ट है, कि केवल एक जन बैठे और समझने की कोशिश करे नहीं होगा। चर्चा चाहिए, डिस्कशन चाहिए। तो एक डिस्कशन ग्रुप बनाना है। डिस्कशन के लिए दो लोगों की आवश्यकता है बस। ज्यादा हो तो बहुत अच्छा, द मोर द मेरियर, बहुत अच्छा अगर ज्यादा मिल जाए, परंतु दो काफी है। तो रात को सोने से पहले यदि हो सके तो घर के जो लोग ज्ञान में है वो दोनों मिलकर, युगल है तो युगल या जो भी, थोड़ी सी चर्चा करें। कुमार है तो कुमार, बहने हैं तो बहने। ऐसा नहीं कि थक गए, बहुत सेवाएं कर ली और लेट गए और नींद लग गई, ये ना हो। चर्चा हो, हमारे मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। इससे ज्ञान के संस्कार पक्के होंगे। अपनी घोट तो नशा चढ़े, जो करना है अभी करो, आज वरदान में है ना। जो भी श्रेष्ठ कर्म करना है अभी के अभी कर लो। तो कब अर्थात, ये उत्तर। दूसरा है, यह चिंतन हमें कहां करना है, कौन से प्लेसेस, स्थान है जहां पर बैठ कर ज्ञान का चिंतन करना है। बोलेंगे सभी, कहां बैठ के करेंगे? सेवा केंद्र कहां पर? बहुत सारे स्थान हैं जहां एकांत है और जहां मौन है, वहां पर बैठकर, जहां आवाज नहीं है। बाबा के कमरे में भी बैठकर किया जा सकता है, अपने घर में भी किया जा सकता है, परंतु प्रकृति के सानिध्य में किए हुए चिंतन श्रेष्ठ होते हैं। छत पर, गार्डन में, समुद्र के कंठे पर, ऐसे कुछ स्थान जहां प्राकृतिक सौंदर्य है। इस संसार में जितने महान कवि, योगी, मूर्तिकार, शिल्पकार हुए थे, सभी निसर्ग प्रेमी थे, और निसर्ग के सानिध्य में रहकर नई टचिंग्स, नई बातें उनको समझ में आती थी, नए राज खुलते थे। और जब तक व्यक्ति प्रकृति से दूर है, नए चिंतन भी नहीं आ सकता है। एक चार दीवारी में बंद है सुबह से लेकर रात तक, नया चिंतन कहां से आएगा? हाँ, आ सकता है यदि उसे बहुत अभ्यास हो तो, परंतु ऐसे कुछ गिने चुने ही होंगे जो कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं, परंतु सब नहीं। इसके लिए हमें एकांत, छत, गार्डन या ऐसी कोई स्थान ढूंढने हैं जहां हम रोज जाए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। सेवाओं का बहुत विस्तार है, परंतु ऐसा ना हो कि सेवाओं के इस जंगल में चिंतन ही खो जाए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं, ये ना हो जाए। तो दूसरा प्रश्न था, कहां करना है? तो ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, क्यों करना है? क्यों करना है, क्या जरूरत है? मुरली है, बहन जी ने मुरली सुनाई, हमने लिखी, डायरी बंद और घर। क्यों करना है? इसके तो कम से कम 50 उत्तर है, कुछ तो बताओ क्यों करना है। अपना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, और मुरली को समझने के लिए, और धारणा आने के लिए। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, धारणा हो नहीं सकती। हजार बार सुन लिया, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु अभी भी वही ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है, अर्थात धारणा हुई नहीं, अर्थात समझा ही नहीं। यदि हम भोजन खा रहे हैं और कोई कान में आके कह दे, और भोजन बहुत स्वादिष्ट है, और कोई कान में आके कह दे कि इस भोजन में विष मिला है, तो हम कहेंगे कि इतना मैं नहीं छोड़ सकता, इतना खा लेता हूं, बाद में छोड़ूंगा। हुँ? धारणा होने के लिए। और क्यों चिंतन करना है? महावाक्यों को अपना बनाने के लिए, ज्ञान और हमारे विचार एक हो जाए। ज्ञान इधर, हमारे विचार इधर, ज्ञान इधर, हमारा प्रैक्टिकल जीवन इधर, दोनों अलग अलग है, एक हो जाए इसलिए। और जब तक हम ज्ञान का चिंतन नहीं करेंगे, दूसरों को समझा सकेंगे? कोई पारसी आ जाए आपके पास और कहे कि बताओ आपका ज्ञान हमारे पारसी धर्म के विषय में क्या कहता है, हम कहेंगे दीदी से पूछ के बताएंगे? क्या कहेंगे? हमारे बाबा ने अभी तक हमको बताया नहीं। कब तक ये कहते रहेंगे कि बाबा ने इस विषय में कब हमको बताया नहीं? कोई क्रिश्चियन आ जाए और कहे कि बताओ ये क्या है, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं लोग। ज्ञान का चिंतन इसलिए करना है ताकि हम ये ज्ञान दूसरों को समझाएं। जो समझे होंगे वो समझा सकेंगे। जो कहता है साकार महावाक्य, बाबा हमको ज्ञान समझाना नहीं आता, बाप कहते हैं अर्थात तुमने समझा ही नहीं है। इसके लिए सारी अव्यक्त वाणियों में क्या शब्द आता है? समझा, समझा। क्यों कहते हैं? शायद कुछ भी नहीं समझा है। तो ज्ञान का मनन आवश्यकता है स्पष्टीकरण के लिए। ज्ञान का मनन आवश्यक है ताकि हमारा मन व्यर्थ से मुक्त रहे, नहीं तो सारे दिन भर व्यर्थ के अंबार लगे पड़े हैं। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसके घर वो चल रहा है, इस जगह ये हो रहा है, ये बहन वो भाई, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। व्यर्थ का सागर है। हम अपने आप को कैसे सेफ रखें? शस्त्र है, कवच है चिंतन। ज्ञान की पॉइंट को उठाना और चिंतन करना, आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। संसार में आस्तिक किसे कहते हैं, संसार में नास्तिक किसे कहते हैं, भगवान की परिभाषा, भगवान के शब्दकोश में आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है, सच्चा सच्चा आस्तिक कौन। संसार भूत किसे कहता है और भगवान भूत किसे कहता है, चिंतन। केवल सुन लिया, डायरी में लिख दिया, डायरी बंद। कुछ कुछ माताएं सेंटर पर डायरी छोड़कर जाती है और फिर दूसरे दिन ही खोलती है, बस सेंटर पर गए, मुरली क्लास में बैठे, डायरी खोली, मीठे बच्चे, फिर ऊपर, फिर प्रश्न, फिर गीत, फिर डायरी बंद बाजू में, और फिर मुरली में डोलना चालू, और बीच बीच में झपकी, और फिर जैसे ही मीठे मीठे सिकीला दे, एकदम से जाग, और बीच बीच में देख लेना अगर नींद आ गई, किसी ने देखा तो नहीं है, अगर नहीं तो हम सुरक्षित है, कोई देखना नहीं चाहिए। जब नींद लगती है तो सबसे पहला काम व्यक्ति क्या करता है, देखता है आसपास, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा अर्थात अब ठीक है सब। फिर डायरी खोली और फटाफट धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट टू वरदान और स्लोगन, और उसके बाद डायरी बंद, कल मिलेंगे, खबरदार इसके बाद कभी खोली तो। अगर दिनचर्या में किसी ने पूछ लिया क्या था मुरली में, हम कहेंगे मुरली बहुत अच्छी थी, बहन जी ने बहुत अच्छी सुनाई, तुम कहां थे, पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो मुरली में क्या है, तो डायरी बंद। और जैसे ही सेंटर से बाहर निकले और चप्पल पहनते पहनते महावाक्य आकाश में, और सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न गुम, और अपने घर पहुंचते पहुंचते धारणा के मुख्य सार गायब, और नाश्ता बनाते बनाते वरदान लुप्त कहीं पर, और नाश्ता खाते खाते स्लोगन खत्म, और शाम होते होते पूरी मुरली पता नहीं कहां चली गई, और मुरली बहुत अच्छी थी। तुमको आना चाहिए था, क्या था वो मत पूछो बस, क्या था ये नहीं पूछना, पर थी बहुत अच्छी। यदि ऐसी हमारी दिनचर्या है तो क्या इसको मुरली के साथ प्यार कहेंगे? प्रभु पाती है मुरली, परमात्मा का लिखा हुआ खत लव लेटर है। संसार में किसी को लव लेटर आता है तो कितनी बार पढ़ते हैं, बाथरूम में घुस घुस के पढ़ते हैं, कोई देख ना ले, छुप छुप के पढ़ते हैं। मनन करना है उसका, सोचना है उसके विषय में, डूबना है उसके अंदर, गहराई में जाना है, क्या कह रहा है। चार शब्द है, सभी अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, शब्दार्थ, भावार्थ, वाक्यार्थ और गुणार्थ। चार शब्द रोज की मुरली से ढूंढने हैं, एक एक वाक्य जो कहा उसका अर्थ क्या है, वाक्य का एक एक शब्द जो कहा उस शब्द का क्या अर्थ है। साधारण से दिखने वाले शब्दों के पीछे कुछ और ही अर्थ है, एक तो शब्दशः अर्थ, दूसरा है भावार्थ, उसका भाव क्या है, भगवान जब ये कह रहा है किस भाव से ये कहा जा रहा है, तीसरा है पूरे वाक्य का अर्थ क्या है, और चौथा गुणार्थ, गुण अर्थ क्या है उसका, गोपनीय अर्थ क्या है, सीक्रेट क्या है उसके पीछे। तो मुरली छोड़ना नहीं है ऐसी। भूत शब्द आया, भूत क्या होता है, भूतों से डर लगता है किस किस को, भूत लगता है कि किसको, कि सबको ही लगता है। बाबा कहते तुम भूतों को भगाने वाले हो, मास्टर भूतनाथ, भूत तुमसे डरना चाहिए, तुम भूतों से नहीं। तो चिंतन, चिंतन करते करते आत्मा शक्तिशाली होगी, चिंतन करते करते संकल्पों का बल जमा होगा, चिंतन करते करते ज्ञान के नए संस्कार बनेंगे, चिंतन करते करते हमारी वाणी में तेज आएगा, ओ जाएगा, जौहर भरेगा तलवार में। कई बार मुरलियों में आया है जैसे वो पादरी लोग अकेले निकलते हैं एक की याद में, तुम भी ऐसी एक की याद में निकलो। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें बाबा ने कहा था, एक है बाप का ज्ञान, दूसरा है बाप का बाप खुद। बाप के ज्ञान को याद करने से बाप को याद करने से ज्यादा फायदा है। एक है बाप को याद करना, दूसरा है बाबा के ज्ञान को याद करना। बाबा ने कहा था बाप के ज्ञान को याद करने से बाप को याद करने से ज्यादा फायदा है। ये महावाक्य है बाबा के। इसके लिए कुछ कुछ बातें तो रट लेनी चाहिए, कुछ कुछ महावाक्य जो मुरली में आते हैं बहुत पावरफुल। अभी दो तीन दिन पहले वरदान था, योग की धूप से क्या कर दो, वरदान था अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, आंसुओं की टंकी को सुखा दो, कितना पावरफुल वाक्य है। रोता कौन कौन है, मेरा हाथ खड़ा करना, एक हफ्ते एक मास में जो रोए हैं, कौन कौन रोया है, सभी रोए हैं। रोना अर्थात क्या कहते हैं बाबा रोने वालों को, विधवा, कोई कोई सुपर विधवा भी है, दिन रात रोते रहते हैं, किसी ने कुछ कहा रो दिया, किसी ने कुछ बोला रो दिया, आंसू यहां रखे हुए है, बस बटन दबाने की जरूरी, बटन दबाया रो दिया, किसी ने कहा यह सेवा ऐसी नहीं ऐसी करनी चाहिए रो दिया, नाराज रूठना रूसना ये मार्ग नाराज होने का रूसने का ढूंढने का रोने का नहीं है। सिक सिक झुक झुक मरमर अग्निपथ है, सब सहन करते करते आगे बढ़ना है यहां पर, जो जितना अधिक सहन करेगा वो उतना अधिक शक्तिशाली होगा। कोई अगर कहे कि मेरे से नहीं होता है सहन, एक चित्र किसी ने भेजा था दो हिरन का। पहला हिरन एक तीर लग गया, घायल पड़ा हुआ है। वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है, खड़ा है, बहुत सारे तीर ही तीर लगे हुए हैं, खड़ा है। पर यह है आध्यात्मिक परिपक्वता। इसमें रोना, रूठना, रूसना इसका काम नहीं है। इसने कुछ कह दिया तो नाराज, उसने ऐसा कह दिया तो चार दिन उससे बात ही नहीं, इसी में जीवन जा रहा है। ज्ञान की कमी है, चिंतन की कमी है, इसके लिए ज्ञान को लाना है। जैसे इस कमरे में, इस हॉल में 1000 साल से अंधकार है, कैसे हटाओगे? तलवार से? सेना लेकर लड़ोगे इस अंधकार से? क्या करोगे? अंधकार को हटाने की विधि क्या है? चैलेंज करोगे अंधकार को? ढकलोगे उसको? भागो यहां से? क्या करोगे? प्रकाश, ज्ञान प्रकाश है। अभी मन में यदि कोई भी कंफ्यूजन है, यदि किसी आत्मा को हम समझ नहीं पा रहे, किसी आत्मा के साथ ऐसा कड़ा हिसाब किताब है कि सब कुछ कर लिया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते हमने सब कुछ कर लिया, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ज्ञान की कोई एक किरण, कोई एक पॉइंट अभी भी समझा नहीं है। वो जैसे ही अंदर जाएगा उस हिसाब किताब से बाहर निकल जाएगी आत्मा। ज्ञान की कमी है। पहले तो ये मान लेना कि हमने समझा नहीं है। ज्ञान का शत्रु कौन है? प्रकाश का शत्रु कौन है? अंधकार। वैसे ज्ञान का शत्रु कौन है? अज्ञान नहीं है। ज्ञान का शत्रु है ज्ञान का भ्रम कि हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है। क्या समझाया है हमने? आत्मा यह है, ये परमात्मा है, ये परमधाम है, ये सृष्टि चक्र है, ये 5 युग है, ये परमात्मा अवतरण का स्थान है, यहां परमात्मा आते हैं, ये ब्रह्मा है। सूचनाएं हैं, सारी सूचनाओं को ज्ञान समझ रखा है। ज्ञान तो कुछ और है, इसी को दूसरों को सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु ज्ञान ये नहीं। ज्ञान तो कुछ और है। अगर ये होता तो दुख ना होता जीवन में। अगर यही, ये तो सभी समझा रहे हैं, ज्ञान तो कुछ और है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग आ जाना कि हमने अभी तक नहीं समझा है कुछ, हमको समझाओ, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ज्ञान। जब ऐसा भाव होगा छोटे बच्चे जैसा कि मुझे समझना है, तब ज्ञान समझ में आएगा। इस भाव से जाओ किसी के पास, उसकी टेस्ट करने के लिए नहीं कि उसको कितना पता है, जानने की जिज्ञासा से। तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनां तत्वदर्शनम्। हे अर्जुन, तदविद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न हो तो अपने गुरु के पास, किसी ज्ञानी के पास इस भाव से जाओ, परिप्रश्ने न सेवया, उसकी सेवा भाव से जाओ। उपदेश अंतिते ज्ञाने न, फिर वो ज्ञान का उपदेश देगा। ज्ञानी नाम तत्व दर्शनाम, वो तत्व का बोध होगा तब। उसकी टेस्ट करने के लिए नहीं जाना। तो ज्ञान के लिए वो प्यास, वो पिपासा हमेशा रहे कि मुझे समझना है, मुझे समझना है, ये ज्ञान है क्या। तो ये भाव हो। तो प्रश्न था हमारा, चिंतन क्यों करें? लास्ट प्रश्न है, चिंतन कैसे करें? इसकी तो बहुत बड़ी विधि है, पूरी दिनचर्या में आज कहीं ना कहीं हम इसको सुनाते जाएंगे। मधुबन में जैसे बताया, हम लोगों का एक छोटा सा संगठन है जिसमें सभी भाई बहनों ने मिलकर 108 विधियां निकाली है मुरली चिंतन की। एक मेथड कंट्रास्ट मेथड, मुरली का चिंतन कैसे करना, कंट्रास्ट करना, जैसे बाबा खुद करता है, ये भक्ति में है, ये ज्ञान में है, ये सतयुग में है, ये इस लोक में है। कंट्रास्ट, पूरी मुरली में कंट्रास्ट कहां कहां आया है? दूसरी एक विधि है एग्जाम्पल मेथड। एग्जाम्पल मर्था अर्थात पूरी मुरली में बाबा ने किन किन चीजों का उदाहरण दिया है, नारद का उदाहरण दिया, मीरा का उदाहरण दिया, वो सारे उदाहरण वहां से निकाल लेना, स्टडी करनी है ना उसकी, जैसे कोई पीएचडी का स्टूडेंट स्टडी करता है, गहराई में जाता है एक एक चीज की, ये भी स्टडी है। तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, एक दिन भी तुमको पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ड्राइंग मेथड, हम देखते हैं विदेशी भाई बहने, विदेशियों का सीजन चालू है, मुरली सुनते कैसे सुनते हैं, एक पेपर रखते हैं उसमें चित्र निकालते जाते हैं, जो जो सुन रहे हैं चित्र निकालते हैं। एक होता है माइंड मैपिंग मेथड, बीच में एक मेन पॉइंट करते हैं उसको एरो बनाते जाते हैं, ऐसे 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 ऐसी 108 अलग अलग विधियां हैं, जिस पर एक दो बार क्लास भी कराई है, वो आप सुन सकते हैं। तो मुरली का चिंतन कैसे करना है वो उसमें आएगा। मुख्य रूप से उसमें प्रश्न ये होने चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा। बाबा के महावाक्य है, जो गाय, कौन सी गाय दूध ज्यादा देती है, गाय कौन सी दूध ज्यादा देती है, जो उगारती है, और जो गाय उगारती नहीं वो क्या है, बीमार। तो जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते गोया बीमार है। तो ये चार प्रश्न तो हम थे। सबसे पहला पॉइंट मुरली, अर्थात मुरली का क्या करना, मनन। जब तक मनन नहीं, केवल मुरली सुन ली और केवल क्लासेस ही सुनते रहते हैं। कई लोगों को ये बहुत आदत है, बहुत क्लासेस सुनते, एक एक दिन में तीन तीन चार चार क्लासेस सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, और जो क्लास कराने वाला है उसी के पीछे फंस जाते हैं, उस आवाज के ही दीवाने बन जाते हैं। क्या कर रहे हो, क्लास। अरे शिव बाबा कहाँ है, सुनना बहुत अच्छी चीज है, पर अपनी घोट तो नशा चढ़े ये भूल जाते हैं। सुनो, थोड़ा सा विस्तार करो उसका मन में, वो सुनना ही माया ना बन जाए, ये भी ध्यान रखना है। केला खाओ और छिलका फेंक दो, छिलके को पकड़कर उसको देखते नहीं बैठो, या उसके साथ फोटो मत लेते रहो। ये ज्ञान पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, ये ज्ञान किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं सिखाता है। साकार मुरलियों में यहां तक कि वाक्य आए हैं, ब्रह्मा को याद मत करना, मैं तो भस्म हो जाओगे, नरक में जाओगे। हाँ, ये दूसरी बात है, वो कौन कह रहा था, ब्रह्मा शायद खुद ही कह रहा है, वो उसकी निर्माणता भी है। ये ज्ञान पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं है, किसी भी व्यक्तित्व की पूजा नहीं करनी है। किसी से कुछ अच्छा सुना, सुन लो और उसको धारण करने का प्रयत्न करो, बस। तो सबसे पहला बताया मनन, सभी करेंगे मनन आज से। उसके लिए एक दूसरा काम दे रहे, रोज की मुरली से 5 टॉपिक निकालने हैं, 5 टॉपिक चिंतन के लिए। जैसे आज की मुरली से अब नहीं तो कब नहीं, बस डायरी में 5 टॉपिक से लिखने, पॉइंट्स बहुत लिख लिए, खाली टॉपिक्स लिखना है, आस्तिक नास्तिक फर्स्ट। अब सारे दिन भर इसके ऊपर विचार करना, सोचना, ये आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है। सेकंड पॉइंट, भूत के सामने जाओगे तो भूत की प्रवेशता होगी, चिंतन, सारे दिन भर इस पर चिंतन। तीसरा, संसार में दुख दर्द है, ऐसे ऐसे ख्यालात करते रहते, गंदगी है, संसार में क्या है, चिंतन का विषय, संसार क्या है और संसार में क्या है, ऐसा ये दुखदाई अनित्यम असुखम लोकम, क्या मेरी इसमें आसक्ति है, आकर्षण है, ये देह क्या है, इसमें मलमूत्र के अतिरिक्त, बकेट ऑफ स्टूल एंड यूरिन के अतिरिक्त क्या है इसमें, कहीं मैं इसी के पीछे पागल तो नहीं, किसी इस चमड़ी के सौंदर्य के पीछे अपना ब्रह्मचर्य, अपनी धारणाएं खो तो नहीं रहा हूं। देखना चीजों को जैसी वो है। वो दिखाया है भर्तरी राजा राज्य छोड़ देता है, जब उसको पता चलता है उसकी पत्नी जिससे वो इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, पागल था उसके पीछे, किसी योगी ने फल दिया और कहा अपनी प्रिय व्यक्ति को देना, वो अपनी पत्नी को देता है। पत्नी का प्यार मंत्री से है, वो मंत्री को देती है। मंत्री का प्यार वो नर्तकी से है, वो नर्तकी को देता है। नर्तकी का प्यार उस सिपाही से है, वो उसको देती है। सिपाही का प्यार उस वेश्या से है, वो उसको देता है। वेश्या समझती है मैं क्या करूं इसका, वो राजा को लाके देती है। राजा सोचता है ये फल तो जाना पहचाना सा है। और सारी बात का पता चलता है और तुरंत वैराग आ जाता है। यहां के सारे संबंध दुखदाई है। अभी अभी संडे मुरली चली थी, सेकंड पार्ट कर्मातीत। कर्मातीत अर्थात मुक्त 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 मुक्त, हर चीज से मुक्त, कर्म संबंध से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त, इच्छा से मुक्त। जब ये पता चल जाए कि यहां का कोई भी प्रेम स्थायी नहीं है, तब वैराग जन्म लेता है। उस भर्तरी के जीवन में एक वर्णन है कि संसार छोड़कर जाता है, वो तपस्या करने लगता है और एक बार जा रहा होता है तो एक हीरे जैसी चमकीली वस्तु उसको दिखती है एकदम से, क्योंकि राजसी थाट बाट में वो जिया है, अब संसार को छोड़ दिया है, सोचता है ये क्या है, हीरा। मन तो कह रहा है कि मैं तो अब वैरागी हूं, मुझे हीरे से क्या, परंतु फिर भी आसक्ति जागती है और मन में आता है एक बार छू तो लू, देखू तो। और जैसे ही जाता है उसको छूता है, वो थूक होती है किसी की, और फिर अपने से बातें करता है, अरे मूर्ख मन अब तक भी आसक्ति गई नहीं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ बुद्धि, अरे मूर्ख क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, भगवान को प्रत्यक्ष करने आए थे, किस बातों में लगे हो, टीवी मोबाइल और इसमें फंस गए, कहां और क्या करने आए थे। तो मनन, एम अर्थात मनन। दूसरा है यू, एम यू आर एल आई, पांच शब्द है मुरली के। यू अर्थात अंडरस्टैंडिंग, मुरली को समझने का प्रयत्न करना है, क्या कह रहा है वो। स्पीकर यहां बैठा है, हम यहां बैठे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। ज्ञान सरोवर में एक जज आए थे बीच में, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बड़े जज है, सारे शास्त्र जिन्होंने पढ़े हैं, वो कह रहे थे जो शास्त्र के ऋषि मुनि है, अगर उन शास्त्रों को तुम्हें समझना है तो ऋषि मुनियों की जो स्टेज थी उसी स्टेज तक पहुंचकर ही उस शास्त्र को समझ जा सकता है। वो यहां है, हम यहां है, नहीं समझ पाओगे, शब्द हाथ में आएंगे पर अर्थ हो जाएगा, ये बात उन्होंने कही थी। अब भगवान बैठा है यहां, ऑडियंस है यहां, समझ पाएंगे। अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, तुम कहते हो तुम्हारा मुझसे प्यार है, मैं हूं ऊपर तुम नीचे क्यों, मैं हूं अव्यक्त तुम व्यक्त क्यों, मैं हूं आवाज से परे तुम आवाज में क्यों, मैं हूं अशरीरी तुम शरीर में क्यों, भगवान के महावाक्य है। जब वो और हम एक लेवल पर होंगे तो ही उसके वाक्य को हम समझ सकेंगे। इसके लिए प्यास हो कि मुझे समझना है, इस ज्ञान को समझना है, क्या है ये ज्ञान। ब्रह्मा बाबा दादियों को पहाड़ों पर लेके जाते थे, किसी को यहां बिठा देते, किसी को वहां, किसी को वहां, एक अभ्यास, तुम अभ्यास करो, मैं आत्मा अविनाशी हूं, बस एक घंटे तक यही अभ्यास करो, आत्मा 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 आत्मा, कुट कुट के कुट, आज कहा ना घोट घोट के समझाओ दूसरों को, सुबह की साकार मुरली, वैसे घोट घोट के अपने आप को समझाना है। अपना ही कोर्स चालू करना है आज से, किसका कोर्स, अपना, क्या समझाना है, पहला पार्ट कि तुम शरीर नहीं, फिर समझाना है तुम्हारा पिता कौन, अपने आप को कोर्स कराना, दूसरों को बहुत करा लिए, अब अपने को कराना बाकी रह गया। अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अध्ययन को बढ़ाना पड़ेगा। 69 से लेकर तो 2017 तक ऐसे कितने हैं जिन्होंने सारी मुरलियां पढ़ ली? अब एक तो वाणी है कोई? कोई कोई है पर बहुत कम। कितना सारा काम बाकी है। और फिर जीवन में परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं बाबा आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमको बताया नहीं। बाबा कहेंगे मैंने बताया था 1972 की इस मुरली के इस लाइन में इसका उत्तर था, तुमने पढ़ा ही नहीं। गलती किसकी है, टीचर की या स्टूडेंट की? तुमने क्यों नहीं पढ़ा? और पढ़ा भी तो उचित समय पर वो याद आ जाए। एक अव्यक्त वाणी है, इस यज्ञ की पहली अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 1969, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात ज्ञान समय पर याद आ जाना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। क्या परिभाषा थी बाबा ने? ज्ञान समय पर याद आ जाना। बस समय निकल गया उसके बाद मैं सोच रहा, अरे थोड़ा सा तो धीरज धरना था, झगड़ा नहीं होता था, लड़ाई नहीं होती थी, भूत के सामने खड़े क्यों रहे, निकल जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, लड़ाई हो गई ना। ज्ञान का समय पर याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। उस फर्स्ट अव्यक्तवाणी के महावाक्य है ये बाबा के। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अहंकार के युद्ध में जो जीतेगा वो हारेगा। जो विजयी है, जो विजेता है, वास्तव में वो उसकी हार है। अहंकार की लड़ाई में यदि हमारे और किसी दूसरी आत्माओं के बीच एक युद्ध चल रहा है, अहंकार का घर घर के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच, सेवा केंद्र के बीच, संस्कार संस्कार के बीच, हार मान लो, इसी में जीत है। अहंकार की लड़ाई में जो जीतता है उसकी हार है। तो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग। यूनान के सेंट कहो या फिलोसोफर दार्शनिक सुकरात, अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं उसको, छोटा था तो समझता था मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझे सब पता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। थोड़ा बड़ा होता है सोचता है बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, थोड़ा जाना हो आधा आधा बाकी है। और बड़ा होता है, प्रौढ़ होता है, समझता है कि अभी तो जितना जाना है 25% है, 75% तो अभी जानना बाकी है। और बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, सोचता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और तब वहां पे दिखा एक डेल्फी होती है, डेल्फी अर्थात एक भविष्यवाणी होती है कि इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष है सोक्रेटिस। क्यों? क्योंकि अब उसकी समझ में आया, ऑल आई नो दैट इज दैट आई नो नॉट, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब ये भाव आएगा कि मैंने नहीं समझा है, मुझे नहीं पता है, तब मैं जानू, ये भाव जागेगा। भक्ति मार्ग में एक कहावत है, अज्ञान अंधकार है। अज्ञान क्या है? अंधकार। पर ज्ञान महाअंधकार है। क्यों? अगर उस ज्ञान से अहंकार आ जाए, अगर जो ज्ञान हमको अहंकार से भरता है, कोर्स करा रहे परंतु इस भाव से करा रहे कि तुम भगवान को नहीं जानते, हम जानते, हम बताएंगे तुम्हें भगवान कौन है, मैं समझाता हूं तुम्हें भगवान कौन है, भगवान का ज्ञान रहा बाजू में, यहां अहंकार का पोषण हो रहा है। सेवाओं का समाचार सुनाओ तो हमने हम माइक लिया हाथ में और सेवाओं का समाचार चालू किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, करती हूं, मैंने इधर भी सेवा की, मैंने उधर भी सेवा की। सेवा का समाचार था या मैं का समाचार था? किसका समाचार है? शायद मैं का समाचार चालू है, मैं का विस्तार प्रकट हो रहा है सेवा की आड़ में। तो दूसरी बात है अंडरस्टैंडिंग। छोटा बच्चा बनकर किसी को हम पूछे तो समझ में आएगा, पर अहंकार को आहत होती है, चोट लगती है इधर। हम और किसी और से पूछे, बिल्कुल नहीं, हम तो महाज्ञानी है, ज्ञान को हमने पिया है। हम किसी और से पूछे, अरे जो सामने आत्मा आई है, हो सकता है जन्म जन्म की तपस्वी आत्मा है। अभी अभी सेवा केंद्र पर छोटी कन्या आई है कोई, हम सोचते इतनी छोटी कन्या ये हमको क्या सुनाएगी, अरे जो आई है शायद महातपस्वी आत्मा आई है, बाल ब्रह्मचारिणी आई है कई जन्मों की। हमें क्या पता किसका पास्ट क्या है। जिसके लिए हमारे अंदर भावना हो, हमें सबसे सीखना है, सबसे समझ। MU। तीसरा है R। R अर्थात रीडिंग एंड रिवाइज। मुरली पढ़ना और मुरली को रिवाइज करना। पढ़ना भी कैसे, एकाग्रता से पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि बस बस ये आज का ही है, जैसे आज के बाद मैं ये पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन समाप्त तो हो रहा है। शाम को 6 बजे प्राण तन से निकले, तो इतना ही समय है। और ये मुरली मुझे ऐसी पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है कि वो छप जाए। दादी जानकी ने बाबा से पूछा, बाबा मैं लेट आई, सब मेरे पहले आ गए यहां यज्ञ में, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा, कितनी बार मुरली पढ़ो, बाबा ने क्या कहा था, कितनी बार पढ़ो, कितनी बार वो तो दादी ने कहा था, बाबा ने क्या कहा था, कम से कम 7 बार पढ़ो। दादी ने कहा, यदि मैं 21 बार पढ़ू तो। दादी की क्लास सुनिए, जानकी दादी की, कोई एक टॉपिक नहीं होता है उसमें, साकार मुरली जैसी क्लास होती है वो। अगर कोई क्लास से निकले, उसे पूछो क्या था क्लास में, तो कहते कुछ पता नहीं, इतनी सारी टॉपिक्स उसमें चर्चा हो गई है, क्योंकि बुद्धि में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है। और उस क्लास में आसपास की 2-3 मुरलियों की कोई ना कोई बात आ ही जाती है। इस उम्र में भी पढ़ते समय ऐसी बात अंदर समा जाना बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ी तपस्या है। आज जो दादी को सम्मान भी प्राप्त है, तो स्थिति भी प्राप्त है, वो उस तपस्या के कारण। जब दादी वापस लौटी विदेश से, 4 साल वहां रह के कुछ सेवा खास हुई नहीं, वही साड़ी थी जिस साड़ी में गई थी। कैसा जीवन रहा होगा। वो दरवाजा था एक सेंटर पर, उसी को सनली दिन में, रात में वही बिस्तर, ऐसा त्यागमय जीवन, ऐसा तपस्वी जीवन था उस आत्मा का। तो तीसरा है रीडिंग, अध्ययन को बढ़ाना है। क्या क्या पढ़ेंगे, साकार मुरली 1, अव्यक्त वाणियां 2, तीसरा मैगजीन्स, चौथा लिटरेचर ज्ञान का। बहुत सारा लिटरेचर है, जगदीश भाई जी का लिखा हुआ है, और बहुत सारे वरिष्ठ साहित्य बहुत सारा है, उसमें अपने आप को बिजी रखना है। आत्माओं के अनुभव पढ़ने में, दादियों के अनुभव है, आदि रत्न किताब है, वंदे मातरम किताब है, बहुत सारे ऑडियोज है। यज्ञ का इतिहास जाने बगैर हम इस यज्ञ को समझ नहीं सकते। एक एक माता ने क्या क्या सहन किया, क्या क्या तकलीफों को उनको सहन किया, आंसू आ जाएंगे। और जब तक हम नहीं जानेंगे इस यज्ञ के प्रति, वो जिगरी प्यार भी नहीं हो सकता, वो पवित्रता के लिए आग नहीं हो सकती हमारे अंदर। कितना सहन किया एक एक ने, कितना सहन किया। तो एक दूसरा काम, एक काम तो दिया रोज की मुरली से 5 टॉपिक निकालना, दूसरा काम दे रहे हैं यज्ञ के इतिहास को सुनना या पढ़ना, ठीक है। उसकी बहुत सारी यज्ञ हिस्ट्री करके ऑडियोज है, दादी मनोहर इंद्रा बहुत सारी सुनाया करती थी इतिहास, बार बार सुनना यज्ञ का इतिहास, क्या हुआ था, कैसे चालू हुआ था, क्या सहन करना पड़ा, और हम जो कर रहे हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं, सहन तो इन्होंने किया है। तो रीडिंग, और रीडिंग करने के बाद रिवीजन। मेमोरी ट्रेनिंग का एक नियम है कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं 24 घंटे के अंदर वो रिवाइज होनी चाहिए, नहीं तो भूल जाता है। जो मुरली सुबह सुनी उसको रिवाइज करना है 24 घंटे के अंदर। तो आर अर्थात रिवीजन, और एल, एल अर्थात लिखना, चौथा लिखना। रोज क्या लिखेंगे, कोई ना कोई टॉपिक ले लो उस पर लिखो, मुरली की जो पॉइंट्स है इतनी अच्छी ढंग से लिखो कि वो याद रह जाए। और आज के सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पर ही लिखो, टाइप करो और उसके ऊपर आप रिवाइज करते रहो। तो एल, और लास्ट है आय, आय अर्थात इम्बाइब, इंग्लिश शब्द है इम्बाइब अर्थात धारण करना। मुरली को क्या करना है, धारण, अभी अभी सुना, आज के आज मुरली सुनते सुनते ही संकल्प कर दो कि मैं आज से ये करूंगा, खत्म, अभी के अभी करूंगा, मुरली में आया तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं है, संकल्प कर लो कि आज के बाद मेरा संपूर्ण जीवन सत्य के लिए है, मुरली में आया ये चीज तुम्हें छोड़नी है। हमको याद है हमारा एक दोस्त था, फ्रेंड एमबीबीएस का, उसकी माता जी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाती थी एक चीज छोड़ के जरूर आती थी जो उसको बहुत प्रिय है, कभी रसगुल्ला छोड़ के आ गई तो कभी गुलाब जामुन छोड़ के आ गई, किसी भी नए तीर्थ स्थान पर जाती थी एक चीज जरूर छोड़ती थी व्रत के हिसाब से। हमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें अनावश्यकता है जिसकी है जीवन में, व्यर्थ जो है छोड़ते जाना है धीरे धीरे, सूक्ष्म स्वयं की चेकिंग करना और छोड़ते जाना। तो ये ऐसी 5 बातें थी, सबसे पहला बताया एम फॉर मनन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ, ज्ञान की ज्ञान अर्थात समझ, जिसने समझा है वह ज्ञानी, जिसने नहीं समझा है वह अज्ञानी। और समझ में ही एक शब्द जोड़ सकते हैं अनुभूति। स्वामी विवेकानंद ने कभी धर्म की परिभाषा दी है एक शब्द में, रिलीजन इज रियलाइजेशन, धर्म अर्थात अनुभूति। जिसने अनुभव नहीं किया वो धार्मिक नहीं है, जैसे आज की मुरली में है जो देहभान में है वो नास्तिक है, जो देही अभिमानी है वही आस्तिक है। तो धर्म अर्थात अनुभूति, तो दूसरी बात थी समझ, तीसरा रीडिंग एंड रिवीजन, अपनी रीडिंग को बढ़ाना है। बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां है, 1960s, 70s, 80s की जो मुरलियां है बहुत गहरी है, डीप साइकोलॉजी है उसमें, उसका स्टडी। फिर बताया लिखना, रोज एक टॉपिक लेना उस पर लिखना, और लिखेंगे भी कैसे, ऐसे नहीं कि किसी न्यूज़पेपर पर देना है, पॉइंट वाइज लिखते जाना, जैसे आस्तिक अर्थात 1, 2, 3, 4 तो लिखने में आसानी होगी, नास्तिक अर्थात 1, 2, 3, 4 छोटा सा एक प्रश्न लिखना उसका उत्तर लिखना, तो ये तीसरा। और चौथा बताया आय, आय अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना, वास्तव में इम्बाइब शब्द का अर्थ होता है पीना। तो मुरली तेरी में है जादू, ये पहला। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ओम शांति।